ख वैदिक व्याकरण प्रातिशाख्य ग्रंथ। प्रातिशाख्यों का महत्व। प्रातिशाख्य शब्द का अर्थ है प्रत्येक शाखा से संबद्ध व्याकरण आदि का बोध कराने वाले ग्रंथ। चारों वेदों की अनेक शाखाएं हैं, अतः प्रातिशाख्य ग्रंथों की संख्या भी वेदानुसार अनेक है। वेदों के यथार्थ ज्ञान के लिए वर्णोच्चारण शिक्षा, संधि नियम, शब्द रूप, धातु रूप, उदात्तादि स्वर और छंदों का ज्ञान अनिवार्य है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रातिशाख्य ग्रंथों की रचना हुई है। प्रातिशाख्य ग्रंथों का शिक्षा, व्याकरण और छंद तीनों से साक्षात संबंध है, अतः इनका त्रिविध महत्व है। प्रत्येक प्रातिशाख्य में उस वेद से संबद्ध सभी आवश्यक बातें दी गई हैं। चारों वेदों के उपलब्ध प्रातिशाख्यों का संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है। एक, ऋग प्रातिशाख्य। यह ऋग्वेद की शाकल शाखा का प्रातिशाख्य है। इसको पार्षद या परिषद सूत्र भी कहते हैं। इसके रचयिता शौनक हैं। इसमें 18 पटल हैं। इसमें मुख्य रूप से इन विषयों का वर्णन है। एक, पारिभाषिक शब्दों के लक्षण। दो, विभिन्न संधियों का विवेचन। तीन, क्रम पाठ का विवरण। चार, पद विभाग और व्यंजनों के स्वरूप का विचार। पांच, वर्णोच्चारण में होने वाली त्रुटियों का उल्लेख। छह, वेद पारायण की पद्धति का निर्देश। सात, अंतिम तीन अध्यायों में छंद शास्त्र का वर्णन। इस पर दो भाष्य मिलते हैं। एक, उवट का भाष्य। उवट ने शुक्ल यजुर्वेद का भी भाष्य किया। दो, विष्णु मित्र कृतवृत्ति। यह प्रारंभ के दो वर्गों पर ही प्राप्य है। दो, शुक्ल यजुह प्रातिशाख्य, वाजसनेयी प्रातिशाख्य। इसके रचयिता कात्यायन हैं। इसमें 8 अध्याय है। इसमें मुख्य रूप से इन विषयों का वर्णन है। एक, वर्ण विचार। दो, स्वर विचार। तीन, संधि विचार। चार, पद पाठ विचार। पांच, क्रम पाठ विचार। छह, वेदाध्ययन विषयक विचार। भाषा शास्त्रीय दृष्टि से इस प्रातिशाख्य का विशेष महत्व है। इसमें 10 प्राचीन आचार्यों के मतों का भी उल्लेख है। इनमें मुख्य हैं कार्ण्व, काश्यप, गार्ग्य, माध्यंदिन, शाकटायन, शाकल्य और शौनक। इनके मतों का वर्णन तुलनात्मक अध्ययन के लिए विशेष उपयोगी है। आचार्य पाणिनि इस प्रातिशाख्य के ऋणी हैं। उन्होंने इस प्रातिशाख्य से अनेक पारिभाषिक शब्द लिए हैं। पाणिनि के कुछ सूत्र भी प्रायः एक रूप हैं। पाणिनि द्वारा गृहित पारिभाषिक शब्द ये हैं: उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, लोप, उपधा, आम्रेडित, अप्रिक्त। इसी प्रकार पाणिनि का सूत्र अदर्शनम लोपः और वर्णस्यादर्शनम लोपः प्रायः एक ही है। इसकी दो व्याख्याएं प्राप्त होती हैं। एक, उवटकृत मातृवेद नामक भाष्य। दो, अनंत भट्ट कृत पदार्थ प्रकाशक नामक भाष्य। इससे संबद्ध दो छोटे ग्रंथ भी मिलते हैं। एक, प्रतिज्ञा सूत्र। इसमें शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध स्वर आदि के नियम दिए गए हैं। दो, भाषिक सूत्र। इसमें शतपथ ब्राह्मण के स्वर संचार से संबद्ध नियम दिए हैं। तीन, तैत्रीय प्रातिशाख्य कृष्ण यजुर्वेदीय। इसका कृष्ण यजुर्वेदी तैत्रीय संहिता से संबंध है। इसमें 2 प्रश्नों में 12-12 अध्याय हैं। इस प्रकार पूरे ग्रंथ में 24 अध्याय हैं। इसमें मुख्य रूप से इन विषयों का वर्णन है। एक, वर्ण समामनाय। दो, स्वर एवं व्यंजन संधियां आदि। तीन, अनुस्वार अनुनासिक का भेद। चार, स्वरों के भेद। पांच, संहिता का स्वरूप आदि। वेदों के पाठ के 2 प्रकार। एक, प्रकृति पाठ अर्थात मंत्र का मूल रूप में पाठ, संहिता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ इसी श्रेणी में आते हैं। विकृत पाठ, इसके शिखा माला घन पाठ आदि 8 भेद हैं। इसमें मंत्र के 2 पदों को आगे पीछे आदि में या अंत में ले जाकर पढ़ते हैं, अतः इसे विकृत पाठ कहते हैं। प्रातिशाख्यों का प्रतिपाद्य विषय प्रकृति पाठ तथा उससे संबद्ध स्वर संधि का विवेचन है। तैत्रीय प्रातिशाख्य की 3 व्याख्याएं उपलब्ध हैं। ये हैं: एक, महिषेय कृत पद क्रम सदन भाष्य। दो, सोमयार्य कृत त्रिभाष्य रत्न भाष्य। तीन, गोपाल यज्वा कृत वैदिकाभरण। चार, सामवेदीय प्रातिशाख्य। सामवेद के कई प्रातिशाख्य हैं। इनमें मुख्य ये हैं: क, पुष्प सूत्र, इसके प्रणेता पुष्प ऋषि हैं। इसमें 10 प्रपाठक हैं। इसका सामगान से संबंध है। इसमें स्तोभ का विशेष रूप से विवेचन है। इसमें ग्राम गेयगान और अरण्य गेयगान में प्रयुक्त सामों की विविध विधियों का विशदीकरण है। पुष्प सूत्र पर अजात शत्रु की एक व्याख्या उपलब्ध है। ख ऋक् तंत्र, यह सामवेद की कौथुम शाखा का प्रातिशाख्य है। इसको ऋक् तंत्र व्याकरण भी कहते हैं। इसमें 5 प्रपाठक और 280 सूत्र हैं। इसके रचयिता आचार्य शाकटायन हैं। इसके प्रतिपाद्य विषय ये हैं: 1 वर्णोच्चारण शिक्षा, 2 संधि विचार, 3 पदांत वर्णों के विभिन्न परिवर्तन, जैसे न का र होना, विसर्ग का र होना, अंतिम स्वर का दीर्घ होना आदि। इसमें प्रयुक्त पारिभाषिक संज्ञाएं 3 प्रकार की हैं: 1 कृत्रिम, जैसे संयोग के लिए क्षण, पदादि के लिए णी, 2 आदि या अंत का अक्षर, जैसे उदात्त के लिए उत, दीर्घ के लिए घ, लघु के लिए घू आदि, 3 अनवर्थक सार्थक परिभाषाएं, जैसे अंतस्थ, उष्म, घोष, सोष्म, अयोगवाह, अनुनासिक। यह यास्क से प्राचीन है। यास्क और पाणिनि पर इसका प्रभाव स्पष्ट है। 5 अथर्ववेदी प्रातिशाख्य, इसके 2 प्रातिशाख्य उपलब्ध हैं। 1 शौनकीय चतुर्ध्यायिका, इसके लेखक शौनक माने जाते हैं। इसका इंग्लिश अनुवाद के सहित संस्कृत डॉक्टर विटनी ने प्रकाशित किया है। इसमें 4 अध्याय हैं। इसके वर्ण विषय हैं: 1 ध्वनि विचार, 2 संधि विवेचन, 3 संहिता पाठ में दीर्घत्व, द्वित्व, णत्व, स्वर संधि आदि का विवेचन, 4 अवग्रह प्रगृह्य आदि का विवेचन, 2 अथर्ववेद प्रातिशाख्य। डॉक्टर सूर्यकांत ने इसका एक सुंदर संस्करण 1940 में लाहौर से प्रकाशित किया था। इसमें संधि, स्वर और पदपाठ के नियम विशेष रूप से दिए गए हैं। 3 छंदः शास्त्र, छंद का अर्थ, छंदस शब्द छत धातु से बना है। यास्क ने निरुक्ति में छंदस का निर्वचन दिया है। छंदासि छादनात् अर्थात छंद भावों को आच्छादित करके उसे समष्टि रूप प्रदान करता है। इसके कारण छंद गेय और सुपाठ्य हो जाता है। कात्यायन ने सर्वानुक्रमणी में छंद का लक्षण दिया है। यदक्षर परिमाणम तच्छंदः, जिसमें वर्णों या अक्षरों की संख्या निर्धारित होती है उसे छंद कहते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि वैदिक छंदों का आधार अक्षर या वर्णों की संख्या है। अक्षरों की संख्या के आधार पर ही छंदों के नाम रखे गए हैं। छंदों विषय ग्रंथ, वैदिक छंदों से संबद्ध सामग्री इन ग्रंथों में प्राप्त होती है। ऋक् प्रातिशाख्य, 2 सांख्यायन शौत सूत्र, 3 सामवेद का निदान सूत्र, 4 पिंगल प्रणीत छंद सूत्र, 5 कात्यायन कृत 2 छंदोनुक्रमणिया। वैदिक छंद वृत्तात्मक है। वेदों में मात्रिक छंदों का अभाव है। वैदिक छंदों के प्रत्येक पाद में वर्णों की संख्या निर्धारित है। ऋग प्रातिशाख्य के 3 पटलों में ऋग्वेद में प्रयुक्त छंदों का विस्तृत विवेचन है। निदान सूत्र में छंदों के नाम और लक्षण दिए हैं। इसमें छंदों के अतिरिक्त सामवेद के अंग, उक्त, स्तोम, गान आदि का भी विवेचन है। कुछ प्राचीन लेखक इसे पतंजलि की रचना मानते हैं। पिंगल के छंद सूत्र के पूर्व भाग में वैदिक छंदों का विवेचन है। उत्तर भाग में लौकिक छंदों का विश्लेषण है। कात्यायनकृत छंदोनुक्रमणी में ऋग्वेद में प्रयुक्त छंदों की नामावली है। उसकी ही कृति सर्वानुक्रमणी के प्रारंभ के 9 अध्यायों में वैदिक छंदों का विवेचन है। छंदों का महत्व, छंदों के महत्व के कई कारण है। 1 छंद हृदय के कोमल भावों की अभिव्यक्ति का मनोरम साधन है। 2 छंद विस्तृत भावों एवं विचारों को संक्षेप में सुसंबद्ध रूप से कथन की एक सुंदर विधा है। 3 छंद शब्दावली में माधुर्य लाता है। 4 छंद संगीतात्मक होने से हृदयालाधक होता है। 5 छंद विचारों को क्रमबद्धता देता है। 6 छंद सरलता से स्मरणीय होता है। 7 छंदों में नैसर्गिक सुषमा है, अतः देवाराधन के लिए छंदोमय वाणी प्रस्तुत की गई है। 8 वैदिक वाणी छंदोमय है, अतः छंद ज्ञान के लिए शिक्षा ग्रंथों आदि में बहुत बल दिया है। इसलिए कहा गया है कि देवता छंद आदि के ज्ञान के बिना न अध्यापन करना चाहिए और न जप करना चाहिए। अविदित्वा ऋषिम छंदो दैवतम योगमेव च योध्यापयेद जपेद वापि पापियान जायते तु सह। यही भाव कात्यायन की सर्वानुक्रमणी में भी प्रकट किया गया है। पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है कि छंद वेद पुरुष के पैर हैं। छंदः पादौ तु वेदस्य। जिस प्रकार पैर शरीर को स्थिरता प्रदान करते हैं, उसी प्रकार छंद साहित्य को स्थिरता प्रदान करते हैं। ऋग्वेद में छंदो विधान। ऋग्वेद में 20 छंदों का प्रयोग हुआ है। इनमें से केवल 7 छंद ही मुख्य रूप से प्रयुक्त हैं। मंत्र संख्या की दृष्टि से इनका क्रम यह है। 1. त्रिष्टुप 4251 मंत्र, 2. गायत्री 2449, 3. जगति 1346, 4. अनुष्टुप 858, 5. पंक्ति 498, 6. उष्णिक 398, 7. बृहति 371। ऋग्वेद में कुल मंत्र 10472 है, जिनमें से उक्त 7 छंदों में 10171 मंत्र हैं। शेष 13 छंदों में कुल 301 मंत्र हैं। मुख्य 7 छंदों में भी केवल 4 छंद ही प्रमुख हैं, त्रिष्टुप, गायत्री, जगति और अनुष्टुप। इनमें ही ऋग्वेद के लगभग 90% मंत्र हैं। छंदो विषय ज्ञातव्य बातें। 1. वैदिक छंदों में प्रत्येक पाद में वर्णों की संख्या गिनी जाती है, इसी के आधार पर छंदों में भेद किया जाता है। 2. एक चरण को पाद कहते हैं। एक पाद में कम से कम 5 वर्ण होते हैं। प्रचलित गायत्री आदि छंदों में प्रत्येक पाद में 8, 11 या 12 वर्ण होते हैं। 3. प्रत्येक छंद में गति होती है। 4. वेदों के छंदों में प्रायः प्रत्येक पद के अंतिम 4 या 5 वर्णों में नियमित क्रम पाया जाता है, अन्य वर्णों में निश्चित क्रम नहीं पाया जाता। 5. 11 और 12 वर्णों वाले त्रिष्टुप और जगती छंदों में 4 या 5 वर्णों के बाद यति होती है। 5 या 8 वर्णों वाले छंदों में इस प्रकार की यति नहीं होती है। 6. ऋग्वेद में अधिकांश 20 अक्षरों 5×4=20 वाले छंदों से लेकर 48 अक्षरों 12×4=48 वाले छंद हैं। कुछ छंद 68, 72 और 76 अक्षरों वाले भी हैं, परंतु इनकी संख्या बहुत कम है। छंदों विषय कुछ सामान्य नियम। 1. पद के अंत के साथ शब्द का भी अंत होता है। 2. ह्रस्व स्वर के बाद संयुक्त वर्ण होंगे तो पूर्ववर्ती लघु स्वर को गुरु माना जाता है। 3. बाद में कोई स्वर हो तो पूर्ववर्ती दीर्घ स्वर को ह्रस्व कर दिया जाता है। बाद में आ होने पर पूर्ववर्ती ए और ओ ह्रस्व ए ओ पढ़ा जाता है। प्रगृह्य ई ऊ ए दीर्घ ही रहते हैं। तस्मई अदात तस्मा अदात में मा का आ दीर्घ ही रहता है। 4. शब्द के अंतर्गत और संधि स्थानों में प्राप्त य व को आवश्यकता अनुसार क्रमशः ई ऊ पढ़ा जाता है। जैसे स्वर को सु अर, व्यूषाह को बी उषाह। 5. एकादेश हुए स्वरों को उच्चारण के समय आवश्यकता अनुसार एकादेश से पूर्व की स्थिति में पढ़ा जाता है। जैसे चाग्नय को च अग्नय, विंद्रह को वी इंद्रह, इंद्र को आ इंद्र। 6. ए और ओ के बाद पूर्व रूप हुए अ अवग्रह चिन्ह को आवश्यकता अनुसार फिर अ पढ़ा जाता है। जैसे नो व को नो अव। कतिपय मुख्य छंद। 1. गायत्री 24 वर्ण 8 8 8। इसमें 8 वर्णों वाले 3 पाद होते हैं। 2 पाद के बाद विराम होता है। 8 8 8। गायत्री में 24 वर्ण होते हैं। इसमें सामान्यतः 8 वर्णों में से पंचम और सप्तम वर्ण लघु होते हैं। षष्ठ गुरु तथा अष्टम लघु या गुरु लघु गुरु के लिए क्रमशः ये संकेत हैं। लघु के लिए फर्स्ट, गुरु के लिए यस। 2. उष्णिक 28 वर्ण 8 8 12। इसमें 28 अक्षर होते हैं। इसमें 3 पाद होते हैं, 2 में 8 और 1 में 12। 2 पाद के बाद विराम। बढ़े हुए अक्षर के अनुसार इसके कई भेद हैं। जैसे क उष्णिक 8 8 12, क ख पुर उष्णिक 12 8 8 ककुभ उष्णिक 8 12 8 3 अनुष्टुप 32 अक्षर 8 8 8 8 इसमें 8 अक्षर वाले 4 पाद होते हैं। 2 पाद से पूर्वार्ध होता है और अंतिम 2 पाद से उत्तरार्ध। सामान्यतः प्रथम और तृतीय पाद में 2 4 6 और 7 वर्ण गुरु होते हैं, शेष लघु या गुरु। द्वितीय और चतुर्थ पाद में 2 4 6 गुरु, 5 7 लघु, शेष लघु या गुरु। 4 बृहति 36 अक्षर 8 8 12 8 इसमें 4 पादों में कुल 32 अक्षर होते हैं, किसी पाद में 8 और किसी में 12। किस पाद में 12 अक्षर होंगे इस आधार पर इसके कई भेद हैं। पुरस्तात बृहति 12 8 8 8 पथ्या बृहति 8 8 12 8 परि उपरिष्टाद बृहति 8 8 8 12 5 पंक्ति 40 अक्षर 8 8 8 8 8 इसमें 4 या 5 पाद होते हैं, कुल 40 अक्षर होते हैं। 2 पाद के बाद विराम होता है। विभिन्न पादों में अक्षरों की संख्या के भेद से इसके कई भेद हैं, जैसे क पंक्ति पथ्या पंक्ति 8 8 8 8 8 विराट पंक्ति 10 10 10 10 सतो बृहति पंक्ति 12 8 12 8 विपरीता पंक्ति 8 12 8 12 प्रस्तार पंक्ति 12 12 8 8 विस्तार पंक्ति 8 12 12 8 छः त्रिष्टुभ त्रिष्टुभ 44 अक्षर 11 11 11 11 इसमें 44 अक्षर होते हैं और 11 अक्षर वाले 4 पाद होते हैं। 4 या 5 अक्षर के बाद यति होती है, 2 पाद के बाद पूर्वार्ध और शेष 2 पाद के बाद उत्तरार्ध पूर्ण होता है। ऋग्वेद में यह सबसे अधिक मंत्रों में प्रयुक्त हुआ है। इसमें प्रथम विराम 4 या 5 पर, दूसरा 7 पर और तीसरा 11वें अक्षर पर। 7 जगति 48 अक्षर 12 12 12 12 इसमें 48 अक्षर होते हैं और 12 अक्षर वाले 4 पाद होते हैं। 2 पाद के बाद पूर्वार्ध और पाद 4 के बाद उत्तरार्ध पूर्ण होता है। ऋग्वेद में प्रचलन की दृष्टि से यह तीसरे नंबर पर है। ऋग्वेद में 1346 मंत्रों में जगति छंद का प्रयोग है। त्रिष्टुप में ही एक अक्षर जोड़ देने से 11 के स्थान पर 12 अक्षर का वह छंद हो गया। इसमें भी 4 या 5 पर प्रथम यति, 7 पर द्वितीय और 12 पर तृतीय विराम होता है। 8 जगति से अधिक अक्षर वाले अन्य 7 छंद ऋग्वेद में प्राप्य हैं। इनका प्रयोग बहुत कम है, केवल जानकारी के लिए इनका विवरण दिया जा रहा है। 1 अति जगति 52 अक्षर 5 पाद 13 13 10 8 8 2 शक्वरी 56 अक्षर 7 पाद 8 अक्षर वाले 7 पाद 3 अति शक्वरी 60 अक्षर 5 पाद 16 16 12 8 8 4 अष्टी 64 अक्षर 5 पाद 16 16 16 8 8 5 अत्यष्टी 68 अक्षर 7 पाद 12 वाले 3 8 वाले 4 6 घृति 72 अक्षर 7 पाद 12 वाले 2 16 वाला 1 8 वाले 4 7 अति घृति 76 अक्षर 7 पाद 9 इनमें भी बड़े 7 छंद हैं, परंतु इनका ऋग्वेद में प्रयोग नहीं है। प्रत्येक में 4 अक्षर बढ़ते गए हैं। इनके नाम और अक्षर संख्या यह है। 1 कृति 80 अक्षर 2 प्रकृति 84 3 आकृति 88 4 विकृति 92 5 संस्कृति 96 6 अभिकृति 100 7 उत्कृति 104 10 छंद में अक्षर कम या अधिक होना, इसके लिए ये पारिभाषिक शब्द हैं। 1 अक्षर कम निचरित 2 अक्षर कम विराट 1 अक्षर अधिक भूरिक 2 अक्षर अधिक स्वराट। जैसे गायत्री के 3 पाद में 24 अक्षर होते हैं, 23 अक्षर होने पर निचरित गायत्री, 25 अक्षर होने पर भूरिक गायत्री, 22 अक्षर होने पर विराट गायत्री, 26 अक्षर होने पर स्वराट गायत्री। 11 मुख्य छंदों के नाम तथा प्रत्येक पाद में वर्ण संख्या की सारणी। क्रम छंद अक्षर पाद 1 गायत्री 24 8 8 8, दो उषडिक ह्य 28 8 8 12, तीन पूर उषडिक ह्य 28 12 8 8, चार ककुभ उषडिक 28 8 12 8, पांच अनुष्टुभ भ 32 8 8 8 8, छह बृहति पथ्या 36 8 8 12 8, सात पंक्ति 40 8 8 8 8 8, आठ सतो बृहति 40 12 8 12 8, नौ प्रस्तार पंक्ति 40 12 12 8 8, दस स्वराट 10 विराट पंक्ति 40 10 10 10 10, 11 त्रिष्टुप 44 11 11 11 11, 12 जगति 48 12 12 12 12, 13 अति जगति 52 13 13 10 8 8, 14 अति शक्वरी 60 16 16 12 8 8, 15 अष्टी 64 16 16 16 8 8।